अभिमान रात के 10 बजे के करीब ऑफिस से घर लौटा था। जैसे ही उसने राजवंश विला में कदम रखा, उसके पास उसके एक आदमी का कॉल आया। आशिका की शादी जिस माफिया से जबरदस्ती करवाई जा रही थी, वो कोई और नहीं, अभिमान के पिता आकाशदीप राजवंश थे, जिन्होंने कई साल पहले उन्हें और उनकी माँ को छोड़ दिया था। ये खबर सुनकर अभिमान को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमी से आशिका की डिटेल्स भेजने को कहा और फिर कॉल कट कर दिया। इस खबर ने उसका मूड और खराब कर दिया था। मुझे खुद को शांत रखना होगा। अगर मैंने मॉम के सामने इतना रेस्टलेस बिहेव किया तो उन्हें शक हो जाएगा। अभिमान ने अपनी टाई को ढीला करते हुए धीरे से बड़बड़ाया। अंदर जाने से पहले उसके चेहरे के भाव फिर से सख्त हो गए। वो सीधे लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर अपनी माँ निशा के कमरे में पहुंचा, जहां बाकी राजवंश फैमिली डिनर करके अपने अपने कमरों में जा चुकी थी। वहीं निशा अभी भी अभिमान का इंतजार कर रही थी। राजवंश विला बेहद शानदार था। हर शख्स का एक फ्लोर और वो फ्लोर किसी 7-स्टार होटल से कम नहीं था। जैसे ही अभिमान ने उस फ्लोर पर कदम रखा, निशा जल्दी से दरवाजे के पास आई। उसे देखते ही अभिमान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो निशा के साथ उसके फ्लोर पर ही रहता था ताकि निशा को अकेलापन महसूस ना हो। कितनी बार कहा है, इतनी लेट मत आया कर, देर रात खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, निशा ने प्यार भरी डांट के साथ धीमी आवाज में कहा। वो लगभग 48 साल की थीं और एक सिंपल सा स्काई ब्लू सूट पहने थीं। निशा दिखने में बेहद दुबली पतली थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी बुझी सी आंखों में सिर्फ अभिमान को देखकर ही हल्की चमक आती थी। बीमारी ने उनकी ये हालत कर दी थी। पूरे घर में सिर्फ निशा ही थीं जिन्हें अभिमान सच्चे दिल से प्यार करता था। उनके लिए ही वो इस घर में रह रहा था। अभिमान ने निशा का हाथ पकड़ा और प्यार से सहलाते हुए कहा, आपको ये क्यों लगता है कि मैंने अब तक डिनर नहीं किया होगा? क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे बिना मैं खाना नहीं खाती। मेरे खाए बिना तुम कैसे खा सकते हो अभिमान? चलो अब जल्दी आओ, मुझे दवाइयाँ लेनी होती हैं, मेरा तो ख्याल किया करो। निशा ने अभिमान का हाथ पकड़ा और उस फ्लोर के डाइनिंग एरिया में ले गई। अभिमान हमेशा निशा के साथ ही खाना खाता था। निशा खाना परोस रही थी जबकि अभिमान फ्रेश होने के लिए अपने कमरे के बाथरूम में गया। वो बाथरूम की शेल्फ पर दोनों हाथ रखकर आईने में खुद को देख रहा था। उस वक्त उसके चेहरे के भाव बेहद सर्द थे। उसके दिमाग में कुछ कड़वी यादें ताज़ा होने लगी। वो उस वक्त को याद करने लगा जब वो सिर्फ 16 साल का था और हॉस्पिटल में था। आकाशदीप यानी स्काई के पैरों में पड़ा अभिमान हाथ जोड़कर रो रहा था, लेकिन आकाशदीप ने उसे इग्नोर किया और झटकते हुए वहां से चला गया था। अभिमान बेटा, तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है? निशा की आवाज बाहर से आई। उनकी आवाज सुनते ही अभिमान कड़वी यादों से बाहर आ गया। मॉम, बस 2 मिनट दीजिए, अभिमान ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी आना, इतना कहकर निशा वहां से हट गई। अभिमान ने गुस्से में अपना हाथ शेल्फ पर पटका और धीमी सर्द आवाज में कहा, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है आकाशदीप राजवंश। अफसोस की बात है कि मेरी माँ आज भी तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही हैं, इस बात से बेखबर कि तुम क्या गुल खिला रहे हो। तुमने मेरी बीमार माँ को छोड़ दिया था। आज भी मुझे तुम्हारे वो शब्द याद हैं जब तुमने कहा था कि मेरी मॉम तुम्हारे किसी काम की नहीं है। नफरत है मुझे तुमसे और इस बात से कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अभिमान गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन निशा के लिए उसने खुद को शांत किया। अपने रूम से बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो निशा के अलावा शायद ही इस दुनिया में किसी ने देखी हो। अभिमान निशा के साथ बैठकर आराम से डिनर करने लगा। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद निशा के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने से उसका मूड ठीक हो जाता था। बातें करते करते अचानक निशा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे पापा का कुछ पता चला? अभिमान ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और उसे पीछे से हल्का सा खुजलाया। जब भी आकाशदीप का जिक्र होता उसे इतना ही गुस्सा आता था। मैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मॉम, अभिमान ने निशा की तरफ देखकर कहा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, इस घर के सभी लोग आकाश के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं दिन रात यही दुआ करती हूँ कि वो ठीक हो, न जाने अचानक कहाँ गायब हो गए। रात को बुरे सपने आते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। आज इतने साल हो गए उन्हें गए हुए। निशा की आंखें गीली होने लगी और उनकी आवाज भारी हो गई थी। राजवंश फैमिली अच्छे से जानती थी कि आकाशदीप कहाँ है और क्या कर रहे हैं, लेकिन अभिमान के चलते सभी निशा के सामने सब ठीक होने का दिखावा करते थे। अभिमान ने निशा का हाथ पकड़ा, उसे सहलाते हुए कहा, आप घबराइए मत, वो ठीक है। अगर ठीक होते तो अब तक हमारे पास जरूर आ जाते, निशा ने नम आंखों से कहा। अभिमान इस बारे में और चर्चा नहीं करना चाहता था। उसने बात बदलने के लिए कहा, मेरा डिनर हो गया है मॉम और बहुत नींद भी आ रही है, आगे से आप इतनी देर तक मेरा इंतजार मत किया करो, मुझे आने में देर हो जाती है। निशा ने उनकी बात पर हल्का सा सिर हिलाया। अभिमान ने उनके माथे पर एक किस किया और फिर अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह राजवंश विला में हमेशा की तरह सामान्य ढंग से शुरू हुई। सुबह सुबह क्लीनिंग स्टाफ पूरी विला की सफाई में लगा हुआ था। ऑटोमेटिक मशीन्स के चलने की आवाज जा रही थी। अभिमान लिफ्ट से आने की बजाय आज सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ी। अचानक अभिमान वहीं पर रुक गया था और उसके चेहरे के भाव सर्द होने लगे थे। दादू, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था, आप अभिमान को उसके और चाचू के हिस्से की शेज देकर गलती कर रहे हैं। ऐसे तो उसने चाचू से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, फिर जब बात शेज की आई तब उसे अपना हक लेना बहुत अच्छे से याद था। एक नाराजगी भरी आवाज आई जो अभिमान के कजिन ब्रदर सिद्धांत राजवंश की थी। वो अभिमान में उम्र में लगभग 4 साल बड़ा था। उसके पास ही उनके दादाजी मिस्टर विक्रम राजवंश खड़े पास ही की बुकशेल्फ से कुछ किताबें चुन रहे थे। सिद्धांत की बातों से भी उनके हाथ नहीं रुके, वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उन्होंने सिद्धांत की बात को सुनकर भी नहीं सुना। उनकी कोई प्रतिक्रिया न देने पर सिद्धांत ने चिढ़कर कहा, ठीक है, कर दीजिए मेरी बातों को इग्नोर, अभिमान वो कंट्रोल करना जरूरी है और उसकी लगाम खींचने का एक ही तरीका है कि उसे राजवंश एम्पायर में काम करने को मजबूर किया जाए। लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी, उसने हिस्सा मांगा और आप सबने मुंह उठाकर दे दिया। काश आज से 5 साल पहले आपने मेरी सुन ली होती तो आज राजवंश एम्पायर को ये दिन नहीं देखने पड़ते। इस बार सिद्धांत की बातों ने विक्रम का ध्यान खींच लिया था, उनके हाथ किताब पढ़ते हुए बीच में ही रुक गए थे। विक्रम ने सिद्धांत की तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम यहाँ खड़े होकर खुद की नाकामी की शिकायत कर भी कैसे सकते हो? निशा और आकाश का तलाक नहीं हुआ था, इस हिसाब से अभिमान का इस जायदाद और अपने पिता की जायदाद पर पूरा हक बनता था। दूसरी बात, अभी भी सारे फैसले तुम्हारे बड़े दादू लेते हैं, मुझे क्या पता था कि वो खुद की कंपनी खड़ी कर लेगा और हमसे बदला लेने के लिए हमें ही गिराने पर आ जाएगा, वरना मैं उसे कभी शेयर्स नहीं मिलने देता। चलो, आपको ये रियलाइजेशन तो है कि वो क्या कर रहा है, अभी भी टाइम है दादू, उसे रोक दीजिए वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारे स्टॉक थड़ाम से नीचे आकर गिर जाएंगे और एक दिन वो हमारी कंपनी भी खरीद लेगा, सिद्धांत ने गहरी सांस लेकर कहा। उसकी बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ गए थे। 5 साल पहले अभिमान जब अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था तब आते ही उसने अपना हिस्सा मांग लिया था। तब उन सबको यही लगा था कि अभिमान अपना अलग कोई छोटा मोटा बिजनेस खड़ा करना चाहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन 5 सालों में उसकी कंपनी एआर एम्पायर उन्हें पूरा टक्कर देगी।
वहीं विक्रम को शांत देखकर सिद्धांत बोला, आप बस इसी तरह सोचते रह जाएंगे, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि उसने हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है और कल एक और मीटिंग होने वाली है। आई स्वेयर दादू, इस बार उसने कुछ किया तो मैं शांत नहीं रहने वाला हूँ। मैं निशा आंटी को जाकर सब बता दूंगा कि उनके पति कहीं गायब नहीं हुए हैं, बल्कि वो तो माफिया का एक ज्यादा पहचाना नाम बन चुका है। ना जाने कितनी लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती हैं, तो उन्हें अब एक बीमार औरत की जरूरत नहीं है। निशा का जिक्र होते ही अभिमान की गुस्से में मुठ्ठियां कस गई थी। वो अभिमान को किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन एक निशा ही उसकी कमजोर कड़ी थी जिसके चलते अभिमान लाचार हो जाता था। उसने बहुत कोशिश की कि वो निशा को राजवंश फैमिली से दूर ले जाए, लेकिन निशा की बीमारी और जिद के चलते अभिमान को भी वहां मजबूरी में रहना पड़ता था। वहीं सिद्धांत की बात सुनकर विक्रम ने कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद निशा को इस मामले में नहीं घसीटना चाहता। अगर तुम्हारे बड़े दादू और मेरे पापा को जरा भी भनक हुई तो वो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेंगे, हमें सब कुछ अच्छे से संभालना होगा। उसके अलावा भी मेरे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम अभिमान को काबू कर सकते हैं। कहीं आप वही पुराने तरीके तो नहीं अपनाने का सोच रहे हैं कि अभिमान की शादी कर देंगे? वो लड़का बहुत चालाक है और उसके पास हर चीज का तोड़ है। जब हम निशांती को बहकाकर उसकी शादी करवाने का सोच रहे थे तब उसने अपनी शादी के पेपर सामने लाकर रख दिए थे कि वो पहले से ही शादीशुदा है। कोई ठोस तरीका सोचिए दादू, वरना मुझे तो वो दिन दूर नहीं लग रहा जिस दिन अभिमान हमारे सारे शेयर्स खरीद लेगा, सिद्धांत बोला। राजवंश एम्पायर के सीईओ की बागडोर उसी के हाथ में थी। हाँ, उसका साथ देने के लिए और भी लोग थे, लेकिन जब भी कंपनी में उथल पुथल मचती तो वो सबसे ज्यादा बेचैन हो जाता था और उसकी बेचैनी और गुस्से का कारण हर बार अभिमान ही होता था। उसने शादी के पेपर सामने लाकर रखे हैं, लेकिन दुल्हन तो नहीं। मैं निशा से जाकर बात करूंगा और कहूंगा कि अभिमान को बोले कि अपनी पत्नी को इस घर में ले आए। उसकी पत्नी, वो लड़की, तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी है, तो उसे अपने इशारों पर नचाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होने वाली है, विक्रम ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, जिसे सुनकर इस बार सिद्धांत को भी थोड़ी राहत महसूस हुई। उसके बाद विक्रम वहां से अपने कमरे में चला गया था। उन्होंने अपना पूरा प्लान सिद्धांत को नहीं बताया था क्योंकि सिद्धांत उनके हिसाब से काफी इम्पल्सिव था। अंदर जाते ही विक्रम ने किसी को कॉल किया और काफी चापलूस अंदाज में कहा, पापा, मैंने आज तक आपके सारे फैसलों को बिना किसी सवाल के माना है, पर अब वो लड़का हद कर रहा है। आप तो पूरी तरह रिटायर होकर आराम से अपना टाइम बिता रहे हैं, लेकिन उसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अब कुछ भी करके हमें अभिमान को कंट्रोल करना होगा, वरना वो लड़का अपनी जिद में हमें बर्बाद कर देगा। विक्रम के पिता कोई और नहीं दिग्विजय राजवंश थे, जो अभिमन्यु के छोटे दादू थे। इस वक्त दिग्विजय वसुधा के पास बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अभिमान के बारे में सुना, उनका चेहरा उदास हो गया था। उन्हें हमेशा से अभिमान से हमदर्दी थी क्योंकि उनके पोते की वजह से निशा और अभिमान को काफी कुछ सहना पड़ा था। मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ, हमेशा की तरह दिग्विजय ने विक्रम को टाल दिया और कॉल कट कर दिया था। लेकिन उनके सामने वसुधा बैठी हुई थी। वसुधा ने दिग्विजय के चेहरे की उदासी को नोटिस कर लिया था। दिग्विजय के बिना कुछ कहे ही वसुधा ने सब समझ लिया था। तो आपका लाडला परपोता अभिमान अपना गुस्सा राजवंश फैमिली पर निकाल रहा है, वसुधा ने हल्का मुस्कुराते हुए पूछा। उस बच्चों की भी कोई गलती नहीं है,
पर मैं हर बार बाकी परिवार को टाल नहीं पाऊंगा। उन्हें हमेशा उसमें अभिमन्यु की झलक दिखाई देती थी। जहां अभिमन्यु को कभी प्रशांत का प्यार नहीं मिला और अंजलि उसे छोड़कर चली गई, तो वही अभिमान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। आकाश निशा को छोड़कर चला गया और निशा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अभिमान को ठीक से प्यार दे सके। हाँ, अभी को थोड़ा ठीक हो रही है, पर अभिमान अब बड़ा हो गया है। वो अपनी माँ और खुद के साथ हुए नाइंसाफी का बदला लेना चाहता है। दिग्विजय ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। हाँ, पर फिर भी उसे रोकना और समझाना जरूरी है। मैं इस मामले में अभिमन्यु से बात करती हूँ, वो अभिमान को जरूर समझा देगा, वसुधा ने दिग्विजय को तसल्ली देते हुए कहा। दिग्विजय ने हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम जानता था कि इस बार दिग्विजय को स्टैंड जरूर लेंगे, क्योंकि पिछले 5 कॉल्स में उन्होंने यही बताया था कि किस तरह अभिमान ने राजवंश एम्पायर के बड़े प्रोजेक्ट को छीन लिया था। वहीं अभिमान ने सिद्धांत और विक्रम की बातें सुन ली थी। वो जानता था कि अगर निशा ने इस मामले में कुछ बोला तो उसे अपनी पत्नी को घर पर लाना ही पड़ेगा, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। अभिमान ने अपनी आंखें कसकर बंद की, फिर खोली। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी राघव को मैसेज किया, मुझे किसी भी हाल में आशिका सिंघानिया से डिवोर्स चाहिए। तो अभिमान को अपनी शादी के बारे में पता है, लेकिन ये शादी कैसे हुई, क्या हुआ, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अभिमान आशिका से पीछा छुड़ाना चाहता है, जबकि आशिका उसे ढूंढ रही है। इनके इस अजीब शादी की हकीकत क्या है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अपनी समीक्षा जरूर दीजिएगा। अगले चैप्टर में मिलते हैं।